اللہ الرحمن الرحیم حجت اللہ بالغہ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عادت کا ذکر شروع فرمایا اور یہ بتایا کہ قوموں کے ساتھ اللہ کی عادت کیا ہے اور پھر احادیث سے وہ ایسی روایات لائے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عادت اور فطرت کے متعلق بیان کیا. ابن خلدون نے اس موضوع پر لکھا ہے, مقدمہ ابن خلدون جو مسلمانوں میں بہت فخر کرنے کی ایک چیز ہے, یہ ایک عرصے سے دنیا میں ناپید تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں کے ڈھیر میں دبتا چلا گیا, یہاں تک کہ فرانس والوں نے اسے نکالا. 16ویں اور 17ویں صدی سے جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو ان میں علمی زوال کی ایک چیز یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے مفکرین تھے اور جو اس قابل تھے کہ وہ امت کی رہنمائی کرتے, وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے یا تو خود گوشہ نشین ہو گئے یا معاشرے کے رویے نے انہیں ایک کونے پہ لگا دیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شاید یہ بھی کافی ہوگا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی میں تقریر کی اور انگریز دنیا میں جس جگہ بھی اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے وہ وہاں کی مقامی زبان کی تعلیم دے کر بھیجتے تھے. وائسرائے آتا تھا ہندوستان تو وہ بہت حد تک اردو جانتا تھا, کسی سفر پہ نکلتا تھا تو اردو عربی فارسی کے ترجمان ساتھ لے کر نکلتا تھا تاکہ کوئی چیز اس سے مخفی نہ رہے. اور انگریز جب ہندوستان میں آئے تو یہ بنیادی طور پر اس ملک کو سنبھال نہیں سکے اور معیشت جو کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس معیشت کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہندوستان کی معیشت انگلینڈ سے بڑی مختلف تھی, یہاں کی اکانومی اور وہاں کی اکانومی. ان کے ہاں زندگی ابھی جڑ پکڑ رہی تھی, نئے سے نئے تجربے ہو رہے تھے لیکن ملک کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو قوم کے سامنے لاتے. اس کو ایسے فرض کر لیجئے جیسے آج ہمارے ہاں کوئی سائنٹسٹ اٹھے یا ایٹمی دھماکے جو بھی قومیں کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا بجٹ اس میں جھونک دیتی ہیں اور پھر جا کر کہیں اس سرمایے کی بنیاد پر اور ٹیکنالوجی اور علم کی بنیاد پر یہ چیزیں اٹھتی ہیں. کتنے ہی جنگی آلات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج کے دور میں امریکہ برطانیہ کے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے, دنیا کی کئی طاقتوں کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بنا لو, پیسے دو ہم تمہیں بنا دیتے ہیں. اب اتنے پیسے دے کہاں سے قوم. بالکل اسی طرح انگریز جب آئے तो उन्होंने देखा हिंदुस्तान में पैसा है तो उन्होंने यह पैसा अपनी नस्लों को फराहम किया और यहां से लूटा उस पैसे को सोने को चांदी को जेवरात को हीरों को पत्थरों को और एक एक चीज लेकर गए और ये रूह डाली उन्होंने मुआशी तौर पर अपने सोसाइटी के उस तबके में जिन्होंने इजादात की और जब कोई एक इजाद हो गई तो उन्होंने अपने साइंसदान को सोने में तोल दिया वो इजाद उनकी दुनिया में फैली और उन्होंने अपनी इजादात के फरोग के लिए जो चीज थी उसकी कीमत ज्यादा रखी और जिस ईंधन पे वो चीज चलती थी उसकी कीमत कम कर दी मतलब बिजली की कोई चीज उन्होंने बनाई टेलीविजन बनाया कोई चीज इस चीज की कीमत ज्यादा रख दी और बिजली जिससे ये चीज चलती है उसकी कीमत को कम रखा ताकि लोग एक मरतबा सरमाया खर्च करें होते होते वो पैसा हुकूमत के पास पहुंचे और हुकूमत अपने वसाइल ज़राए इनको इस्तेमाल करे और उस पैसे में खयानत की इजाजत ना दे इस खयानत की इजाजत ना देने का हाल अब तक ऐसा है आइंदा तो अल्लाह ही को मालूम है कि मार्गरेट थैचर ने अपनी इस प्राइम मिनिस्टरशिप 10 साल गालिबन हो रही हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के तजर्बे अब लिखे हैं और उसमें उसने एक जगह लिखा है कि मैंने हुकूमत बरतानिया से कहा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में मेरा घर छोटा है और एक कमरा बनाने की इजाजत दे मुझे मैं बनाना चाहती हूं तो बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि वजीर आजम को अगर एक कमरा आज आप बनाने की इजाजत देंगे इनके बाद जो आएंगे वो कहेंगे हमारा घर भी छोटा है हमें और बनाने दो तो लिहाजा इस बात को खोलो ही नहीं किसी को उस घर से ज्यादा बनाने की इजाजत दी है नहीं दी इजाजत और वो लिखती है आगे चल के कि कोई मेरा नौकर नहीं था मैं वजीर आजम रही और मुझे जो काम करने पड़ते थे तो मैं दोपहर का खाना नहीं खा सकती थी इसलिए पकाने वाला कोई नहीं था तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर अपने घर में जाती थी और सैंडविच एक मशीन में बनाती और कॉफी मशीन में बनाती ये चीजें लेके नीचे आ जाती थी और बैठ के खाना खा लेती थी बस ये मेरा दोपहर का खाना रहा सारी जिंदगी यानी जितनी भी गुजरी है प्राइम मिनिस्टरशिप में ये थी तो नतीजा उसका ये निकला कि दौलत मुल्क में जमा रही जब जमा रही तो वो उन्होंने नए नए तजर्बात जो करने थे उस पर काम आई और जब नया तजर्बा हो गया एक नई चीज आ गई तो लोगों का एतमाद अपनी हुकूमतों पे बढ़ता चला गया और कौमें इसी तरह उठती हैं और बनती हैं उनके पास साइंस ने नया एक पहलू बदला था और पैसा नहीं था हिंदुस्तान मिल गया और ये बदकिस्मती थी पूरी दुनिया की हिंदुस्तान की दौलत वहां गई और इस पैसे की बुनियाद पर वो लोग उठे और फिर उन्होंने अपना ये इंतजाम किया कि हम किसी भी मुमलिकत पर जब कब्जा करें तो हमारे लोग जो वहां जा रहे हैं इन्हें वहां की जुबान आती चुनाचे इनका एक बड़ा आदमी था और दिल्ली चुके दारुल हुकूमत रही दारों खिलाफा रही तो शाह लजीसा मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह का बयान जुमे को सुनने आया और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब बयान पूरा किया तो हजरत से मिला और कहने लगा कि हजरत आप जैसे लोग मैदान अमल में ना आए तो उसने फरमाया क्या करते लोगों ने हम मौलवियों को एक तरफ कर दिया उसने कहा यही तो वजह थी कि हम आ गए जब आप जैसे लोग अकलमंद दानिश्वर कौम रद्द कर दे और क़ियादत उनके पास नहीं रही तो मुतबादिल चाहिए था खला पैदा हो गया था तो वो खला अंग्रेजों ने कहा हमने आपके पुर कर लिया क्योंकि कौम ने आप लोगों को कबूल नहीं किया इब्न कुल्दून ने ये चीजें लिखी और इब्न कुल्दून ने बताया कि कौमों में जब ताज्जुब होता है तो वे जिंदा रहती हैं ताअसुब किस चीज का नाम है इसको भी जरा सा समझना चाहिए तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आगे चल के जज़ुल्लाह में बात करें एक इंसान एक खबर सुनता है और खबर सुनकर वो बर्दाश्त किस हद तक कर सकता है यहां से बात शुरू होती है एक आदमी ने आके खबर दी कि माज अल्लाह तुम्हारी दुकान पे आग लग गई है एक आदमी उस खबर को सुन के भाग पड़ता है और कहता है कि मेरी तो सारी दुनिया लूट गई ले दे के एक दुकान ही थी आग लग गई दूसरा कहता है 100 दुकानें पुराने दी हैं किस दुकान पे आग लग गई है अब इस इंसान का बर्दाश्त का मियार और पहले की बर्दाश्त का मियार मुख्तलिफ है एक और आदमी है और वो सुनता है कि फलां की दुकान पे आग लग गई तो दिल में खुश होता है कि अच्छा हुआ इसने मार्केट में बहुत कमा लिया था अच्छा हुआ आग लग गई एक कोई और उसका हमदर्द सुनता है तो रो देता है कहता है यार इस बेचारे के पास जितना भी हो लेकिन बड़ा अच्छा बंदा था क्या इसका नुकसान हो गया खबर एक ही है और सुनने वाले की बर्दाश्त की हद कितनी है हत्ता के कभी कभी बुरी खबर सुन के जो सहना पड़ती है इससे पता चलता है कि लीडरशिप क्या है इससे पता चलता है कि लोग बने हुए कैसे होते हैं कि किसी ने आके इत्तला दी किसी औरत को या मर्द को कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया या तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया तो ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि जब उसने सुना मेरे शौहर का इंतकाल हो गया वही गिरी और मर गई इसलिए हुकूमत बर्दाश्त अंदर नहीं होती कई जगह आप देखें हर एक के घराने में पेश आता है कि किसी ने आपके इत्तला दी कि खानदान में फलां जवान लड़के का इंतकाल हो गया बाप की कुव्वत बर्दाश्त कितनी होती है मां की कुव्वत बर्दाश्त कितनी होती है बीवी की कुव्वत बर्दाश्त कितनी होती है हकीम लोग कहते थे कि इंसानी जिस्म में कुव्वत बर्दाश्त का जो मादा है वो आसाब में है और अपना कहते हैं पट्टे को रब को और वो बताते हैं कि इसका महल पट्टे जो होते हैं इंसान के वो जितने मजबूत होते हैं उनमें कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है और फिर जब वो तायुन करते हैं हुकमा हिकमत जो पढ़ाते थे दरस निजामी में अब दरस निजामी में आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज अलग करते चले गए खत्म ही कर दी दरस निजामी में पहले फारसी पढ़ाते थे कोई मौलवी होता था इससे फारसी ना आए लेकिन अब एक मुद्दत से फारसी खत्म हो गई बिल्कुल उनका ताल्लुक ही नहीं रहा फारसी किताबों से मंतिक और फलसफा पढ़ाते थे मंतिक और फलसफा की बात ही नहीं यही उलूम शरफिया की जो किताबें हैं जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो उलूम शरफिया में वो मौलवी साहिबान जो थे दरस निजामी के पढ़े हुए वो बहस करते थे कि बिजली ये जो रोशनी है ये क्या चीज है वो बहस करते थे कि हरारत क्या चीज है वो बहस करते थे कि ठंडक क्या चीज है कौन सी चीजें इसे रोकती हैं कौन सी चीजें ज्यादा करती हैं इंसानी जिंदगी का इसके साथ ताल्लुक क्या है तो जब फलसफा और मंतिक निकला तो ये चीजें भी उन्होंने निकाल दी हत्ता के जो पुराने उलमा होते थे आज से 500 साल पहले 600 साल पहले वो इस दरस निजामी में ही मौसीकी को भी पढ़ते थे और मौसीकी उन्हें बाकायदा पढ़ाते थे ये मौसीकी है बत्ती किस तरह फलसफे ही की एक शाख है ना फलसफा जब बहस करता है चीजों की पैमाइश से और उनके जावियों से दो ज्योमेट्री बन जाती है फलसफा जब बहस करता है दलाइल से तो इल्मे कलाम बन जाता है फलसफा जब बहस करता है आवाज से कि आवाज कैसे पैदा होती है और आवाज में जेर उपम कैसे आता है ऊंची कैसे और नीची कैसे होती है ये मौसीकी बन जाती है तो फलसफा जो पढ़ाते थे उसकी शाखें ये जो पढ़ाते थे तो उसमें मौसीकी भी आ जाती थी और वो बताते थे कि मौसीकी के जरिए इंसानों का इलाज कैसे होता है मौसीकी के जरिए बागियों पर कैसे काबू पाया जाता है मौसीकी के जरिए वो आदमी जिसपे मायूसी की कैफियत आई है और वो खुदकुशी करना चाहता है उसको खुदकुशी से कैसे बाज रखा जा सकता है और फिर वो दिन पढ़ाते थे कि मुफर्रहात किसे खिलाई जा सकती हैं मुफर्रहात का मतलब ये है कि वो चीजें खिलाई जाएं जिससे तबीयत में उमंग और तबीयत में जिंदा रहने की तमन्ना पैदा हो खुशी पैदा हो अब उसकी एक मिसाल देखिए, जो लोग कराची रहते हैं या कभी गए हैं या दुनिया के किसी भी ऐसे शहर में जो साहिल पर वाकई है, वहां की सुबह और दुनिया के वो शहर जो जमीनी इलाकों में वाकई है, दोनों की सुबह में फर्क है। कराची में जो लोग उठते हैं सुबह वो बिल्कुल जैसे मुर्दा होते हैं, और पंजाब में जो लोग उठते हैं बड़े फ्रेश, बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, आराम से नींद की, और ऐसे उठे जैसे नई एक जिंदगी मिल गई है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि साहिली शहर जो होते हैं वहां की आबो हवा की वजह से इंसान जब उठता है तो वो अपने आप को ताजा महसूस नहीं करता। जो कराची वाले हैं ये उनसे पूछिए, या जो लोग कराची गए हैं कभी उनसे पूछिए कि वहां की सुबह में और यहां की सुबह में इस्लामाबाद में क्या फर्क होता है। दुनिया में हर जगह तकरीबन ये पाया जाता है कि जो साहिली शहर हैं उनकी सुबह मुख्तलिफ होती है, और जो मैदानी इलाके वाले हैं इनकी सुबह मुख्तलिफ होती है। तो अतिबा क्या करते थे, एक सुबह वो है जो आपके इस्लामाबाद में होती है, और अगर कोई खारजी असरात ना हो तो फिर अमूम आदमी जब सो के उठता है तो बहुत ताजा होता है, बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अच्छी नींद हो गई, काम करने के लिए मुस्तैद होता है। एक आदमी वो है जिस पे मायूसी तारी हो गई, पैसे लुट गए, खुदा ना खास्ता कारोबार खत्म हो गया, किसी ऐसी हस्ती का इंतकाल हो गया जिसके साथ से शदीद मोहब्बत थी, ये चीजें और बहुत से और फैक्टर्स मिलके परेशानियों का इजाफा हो गया, आदमी के दिल से जिंदा रहने की उमंग छीन लेती। ये जो जिंदा रहने की उमंग छीनती है तो नतीजा ये निकलता है कि वो आदमी खुदकुशी की तरफ चला जाता है, और वो आदमी कहता है कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और ये आम तौर पे मर्ज उस वक्त भी हो जाया करता है जहां पर रात लंबी होती, दिन लंबा हो जितना भी आदमी रहता है, काम में मसरूफ है, कोई चीज सुन रहा है, कोई चीज पढ़ रहा है, किसी के घर जा रहा है, सफर कर रहा है, मसरूफियत होती है। और जब रातें होती हैं लंबी, मसलन 4 बजे सूरज डूब गया और अगले दिन 9 बजे से डूब हुआ, तो ये 17 घंटे की रात इसमें करें क्या, कितना सोए, कितना खेले, कितना क्या करना है। इस 17 घंटे की, 16 घंटे की, 15 घंटे की रातें इंसान की तबीयत में खुद ब खुद ऐसी चीजें पैदा कर देती हैं कि अगर वो मायूसी की तरफ चल पड़े तो नतीजा ये निकलता है कि वो मर जाता है। और यही वो चीज बुनियाद बन गई थी कि पहले जमाने में लोग बैठते थे, शाम को किस्से किया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे। सर्दियों में खास तौर पे दुनिया में जहां जहां सर्दी का वजूद, यकीनन हर जगह ही वजूद था, तो वहां पर लोग मगरिब के बाद, इशा के बाद बैठ के किस्से कहानियां किया करते थे। गांव में बड़े बैठ जाते थे, आग जला ली, घंटा दो घंटा उसमें गुजर गया। शहर से बड़े बड़े चांदनी चौक बहुत से शहरों में पाया जाता था, वहां पे किस्सा गो आ जाते थे और वो किस्से करते रहते थे। यहां पर दिल्ली में बड़े किस्सा गो मशहूर थे, वो किस्सा करते थे, ऐसा किस्सा सुनाते थे कि कहानी शुरू की, आधी कहानी में किसी और किरदार पर चल पड़े। ये बिल्कुल मरहूम रहमतुल्लाह ने मसनवी में किया है ना, उनके साथ उन्होंने रहते किया, मौलाना आधी बात करते हैं फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर उससे और चले जाते हैं, फिर उससे और चले जाते हैं, बीच में 10 किस्से आ जाते हैं, फिर मौलाना लौट के आते हैं अपने असल किस्से की तरफ। तो आदमी का दिल अटका रहता है कि उसका क्या हुआ, जो पहली थी बात वो किधर गई। ये किस्सा को भी ऐसे ही करते थे। पिशावर में किस्सा खानी बाजार जो मशहूर है, उसकी वजह यही है कि वहां पे शाम को आके लोग किस्सा करने बैठ जाते थे, तो सर्दियों की रातों में कुछ घंटे वहां गुजर गए, बाकी उठ के घर चले गए और आखिरी पहर में उठ के अल्लाह को याद किया। इस तरह वगरना दुनिया में जहां ये निजाम नहीं थे, इंग्लैंड था, यूरोप था, अब भी वहां 4 बजे सूरज गुरूब हो जाता है, उसको 9 बजे जा निकलता है, 17 घंटे की रात आदमी करे क्या। नतीजा ये निकला कि जब लोग उठे और उन्होंने दुनिया को नई नई चीजें दी, तो उनमें से एक ये टेलीविजन की इजाद भी थी। उन्होंने कहा घर पे बैठो, शाम को टीवी देखा करो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे इसमें खप गए, तो उसमें खुदकुशी का रेट जो था वो कम हो गया कि लोगों को सोचने ही बजाय देखने का मौका मिल गया वरना खुदकुशी बहुत ज्यादा तो इस तरह होता है कि लोग इंसानी ज़हन कोई मसरूफियत चाहता है और इंसानों को मसरूफ रखने के लिए इस तरह की चीजें ये जो बीमारी की कैफियत पैदा होती है मायूसी की कैफियत पैदा होती है अब इसे कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया अब ये जदीद इस्तेलाह है उलमाए नफ्सियात ने इसमें डिप्रेशन का इलाज लिखा है लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है हमारे यहां क्या होता था डिप्रेशन जब हो जाती थी मशरिक में तो यहां के उलमा ऐसी चीजें खिलाते थे कि एक चमचा खाने की देर है वो चमचा आदमी खा ले सारी मायूसी खत्म हो जाती है और ऐसे लगता है कि 10 घंटे सो के अभी उठा इस दवाई को हकीमों की इस्तेलाह में मुफर्रकात कहते थे यानी वो चीज जो तबीयत में तफरीक पैदा करे डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं अब डॉक्टर उन्हें ऐसी दवाई देते हैं कि वो खाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता मायूसी के ख्यालात दूर हो जाते मौसीकी जो पढ़ाते थे दरस निजामी में उसके जरिए कभी इलाज भी करते थे वो कहते थे प्लान राग इस आदमी को सुनाया जाए तब इसकी तबीयत में जिंदगी जीने की उमंग पैदा हो अब वो दरस निजामी रहा ना वो लोग रहे ना वो इल्म रहा तो ये जो तासुब कौमों में होता है उत्सवा उत्सवा बर्दाश्त करने की कुव्वत ये बर्दाश्त करने की कुव्वत कितनी बढ़नी चाहिए कितनी बढ़नी चाहिए ऐसे ऐसे लोग जो कौमों की क़यादत करते थे और अब भी हैं उनकी कुव्वत बर्दाश्त बड़ी शदीद होती है जितनी कुव्वत बर्दाश्त पाई जाती है उतना ही वो आदमी बड़ा काम कर सकता है और तबीयी तौर पे आप खुद कभी गौर करें खामोशी से देखते रहें कि जितनी कुव्वत बर्दाश्त मर्द में होती है औरत में नहीं होती अचानक हादसा पेश आ जाए मां का तासुर और होता है बाप का तासुर और होता है बहन रोने पीटने लग जाती है और भाई रोता है लेकिन अपने आप को संभाल लेता है बाप की इंतकाल की इत्तला मिलती है तो बड़ा भाई वो सोचता है कि सारा घराना मेरे जिम्मे है तो मैं भी अगर पागल बन जाऊं तो रहेगा क्या दुख उसे भी होता है लेकिन वो सह लेता है और दूसरे जो 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 औरतें नहीं सह सकती बहने बेख्तियार वो कभी कभी अपने अपने जज्बात में बहुत ज्यादा आगे चली जाती है ये असबा जो बर्दाश्त करने की कुव्वत है ये किस इंसान में कितनी है इसी से कौमों का फैसला हो जाता है इसी से मुल्कों का फैसला हो जाता है जो आदमी जिस दर्जे का होता है उसकी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान बताता है कि इस काबिल है या नहीं एक आदमी की कुव्वत बर्दाश्त है और वो कहता है कोई हर्ज नहीं पूरा मुल्क मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है परवाह नहीं बैठो सोचो कौम को किधर लगाया जा सकता है लोगों के साथ कैसे डील किया जा सकता है वो उन रास्तों पर चला देता है और कुव्वत बर्दाश्त उसकी जवाब नहीं देती नतीजा ये हुक्मरानी कर लेता है और हाकिम की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए तो लोगे अच्छा ऐसे हुआ है लिहाजा चढ़ दौड़ो तो फिर वो कौमों को तबाह हो जाती है कौमें इसी तरह ये कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान होता है दीन से हटके सियासियात के जो उलमा हैं वो इसीलिए खुद इब्ने खुल्दून हजरत शाह अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि जिस इंसान के असबाब कमजोर हैं पट्टे कमजोर हैं और उसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है उस आदमी को कौम की क़यादत नहीं दी जा सकती और फिर वो कहते हैं कि फौरी फैसले और उसके बाद हिम्मत कि उसको बर्दाश्त करना ये लीडरशिप के औसाफ में से है कि वो कैसे इस वक्त क़यादत का फैसला करती हैं बाबर बादशाह बैठा हुआ था और बाबर को अल्लाह ने गैर मामूली खूबियां दी थी बड़ी खूबियां ऐसी खूबियां थी जो रंजीत सिंह में पाई जाती थी रंजीत सिंह जो था सिख इतना बड़ा आदमी था कि अगर सिख उसे मिल जाते अच्छे और उसकी टीम तैयार हो जाती तो ऐसा जहीन आदमी सिखों में नहीं पाया जाता लतीफे की बात भी सुनाए जोशमली आबादी पठान था बुनियादी तौर पे तो और पठान भी जबरदस्त मिली आबाद लखनऊ के करीब एक जगह हमने देखी है वहां के रहने वाले और जो इसमें आबादी वो नाज भी करता था अपने पठानों ने बेटे का उससे कहा कि अब भी सुबह जो दरे खैबर से हवा आती है अभी सुबह जो दरे खैबर से हवा आती है अपने आबा के धड़कने की सदा आती एक जगह कहता है सैफ तलवार को कहते हैं ना सैफ पिघला के कलम ढाल लिया है मैंने तो दीवान सिंह मक्तू से मिला दीवान सिंह लिखता तो जब पहली बार मिले तो दीवान सिंह ने बेख्तियार हाथ खोले पंजाबी लिखता ऐसे हाथ खोल के गले लगा लिया जोश को और कहने लगा जोश इतने पठान हो के इतनी अच्छी शायरी करते हो यानी पठान तो हमेशा पश्तो ही बोलते हैं तो लतीफे की बात है उसने कहा पठान हो के इतनी अच्छी शायरी करते हो तो जोश बेख्तियार बोला और कहने लगा सिख हो के इतनी अच्छी दाद देते हो तो ये मसला क्या है बात ये है कि वो आसाब की कुव्वत किस इंसान की कितनी है इससे कयादत का दारोमदार है तो कहते हैं कि जिस इंसान में बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं तो इसमें ये जो रंजीत सिंह का सिख होकर इतना बड़ा आदमी इनमें कोई नहीं गुजरा उसके बाद भी अब तक नहीं आया इसने पूरी सिख तहरीक को तशद्दुद से दूर रखा ये बड़ी खूबी थी उसमें कि इतना जंगजू होने के बावजूद इतना कत्लेआम करने के बावजूद वो कहता था कि जो भी मजहबी तबके और ये बात 100 मरतबा सोचने के काबिल है वो कहता था मजहबी तबके जब तशद्दुद पे उतर आते हैं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं वो कहता था नहीं चल सकते इसलिए उसको कहता था तशद्दुद से दूर रहो अगर तुमने पैगाम पहुंचाना है खुदा का और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो इस सिख मत में तशद्दुद को शामिल ना करना ये तो फिर बाद में हुआ है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब गुरु गोविंद ने बगावत की और उसने सिखों को डाल दिया लड़ाई पे और इन चीजों पे तब इनमें तबाही आई है वरना अब जो सिखों की कैफियत है बड़े शरीर में सिख इससे कहीं ज्यादा तरक्की कर चुके होते आप अंदाजा करें रंजीत सिंह का कि उसने उस जमाने में जब पंजाब में उसकी हुकूमत थी तो उसने ये चाहा कि गुजरांवाला को अपनी हुकूमत की मरकजी जगह बना दारुल हुकूमत बनाए और उसने रंजीत सिंह ने उस जमाने में खत लिखा फ्रांसीसियों को जर्मन्स को इंग्लैंड को और कहा जितने तुम्हारे जर्नैल मुस्ताफी हो गए मुद्दत पूरी करके रिटायर घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं मुझे वो चाहिए उन्होंने कहा तुम क्या करोगे उसने कहा उन्हें मेरे पास भेजो ताकि मेरी सिख फौज की ट्रेनिंग कर दें तरबियत कर दें और जो चाहे मैं अपने खजाने से देने को तैयार हूं तो उसने कोई 150 या 200 जर्नैल बुलाने थे जिसमें से 50 के करीब आए उनमें एक जनरल विंटोरा आया जो फ्रांस का था और ये जनरल विंटोरा जब आया तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त मेरे खिलाफ जो चीजें उठ रही हैं उनमें मुसलमानों में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक है इस पे काबू पाओ और इन मुसलमानों को किसी तरह जेर करना है जनरल विंटोरा गया सैयद साहब रहमतुल्लाह से मिलने फिर तारीख में वाकयात आते हैं कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह मिलने के लिए आए तो जनरल विंटोरा ने कहा कि आप हजरत हमें जिज्या दे दें और फिर लंबे मुजाकरात हुए लेकिन इस तहरीक की बजाय नाकामी में इस जनरल विंटोरा का हिस्सा था लेकिन अपनी फौज को मुनज्जम बनाने के लिए रंजीत सिंह ने ऐसा किरदार अदा किया ये वो दिमाग था जो बाबर का बाबर बादशाह में बड़ी खूबियां बैठा हुआ था और सवैया लाई गई तो ये जितने मुगल थे बादशाह थे हकीकत में और वाकई इस काबिल थे कि कौमों को संभालते उनकी जाती जिंदगी में जितनी मसरूफियत थी जितनी नजाकत और खूबियां थी वो हुक्मरान की सतह पर भी उतनी ही खूबियां वो जानते थे कि हुक्मरानी कैसे करनी वो जानते थे कि चाय कैसे पीनी है कब कैसे पीना है तो जो ये जानता था वो हुकूमत करना भी जानता था और जब लीडरशिप इतनी खराब आ जाए कि उन्हें खाना खाना तक ना आता हो तो उन्होंने जाहिर है हुक्मरानी में भी ऐसे ही करतूत करने बाबर बादशाह का यह हाल था
कि उसे इतना जितना अपनी फौज का एहसास रहता था बाकी रियाया का भी इतना एहसास रहता था कहता था कि हिंदुस्तान पहुंच गया हूं और किसी तरह यहां पर तरबूज होना चाहिए किसी तरह वहां पर वो चीजें होनी चाहिए जो मुझे वहां मिलती थी और फिर जब उससे बीज मंगवाए माली मंगवाए या हिंदुस्तान में फसलें लगवाई और जिस दिन तरबूज और खरबूजा यहां पर आया है इतना खुश हुआ माली ने आके कहा कि जनाब वो बीज फूट गया है बाबर बादशाह ने माली को सोने में तोल दिया और उसने कहा अब ठीक है अब हिंदुस्तान में लोग ये चीजों को खाएंगे और इन चीजों के खाने से यहां का मिजाज बदलेगा कौन सोचता है इतनी कि यहां पे फर्ज कर लो माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को ये सोच ले कि सुअर का गोश्त आम करो ताकि यहां के लोगों का मिजाज बदले ऐसी है जैसे मुसलमान कभी सोचते हैं कि हम अमेरिका में इंग्लैंड में हलाल का गोश्त आम करें ताकि 2-400 साल में फर्क पड़े उन नस्लों पे हलाल गोश्त आए फिर तो फर्क पड़ेगा ना तब्दीली आएगी तो बाबर बादशाह को सवैयां पेश की गई तो वो लच्छे कांटे नहीं थे बावर्ची में तो बाबर ने कहा कि छुरी लाओ छुरी लाने में ताखीर हुई तो शेर शाह सूरी पास बैठा हुआ था इसने अपना खंजर निकाल के पेश कर दिया कि हुजूर देर ना हो जाए आप इससे काट लीजिए तो बाबर ने उसे देखा और सवैया तो खैर खा ली उसने और बेटे को हाइयों को बुला के तन्हाई में कहा कि ये जो पठान है ना इसकी हरकत मुझे बताती है कि अगर ये मेरे पास जीता रहा तो तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा इसका जरा ख्याल करना जो आदमी इतनी जल्दी एक मसले का हल निकाल सकता है और मुझे देख के बात कर सकता है इसका मतलब है कि इसमें बर्दाश्त की कुव्वत ज्यादा सियासियात का मैदान है एक आदमी की कई जेहतें होती भैया फर्क मसलन वो आलिमे दीन है एक उसकी हैसियत बाप होने की है एक उसकी हैसियत फर्ज कर लीजिए कि वो डॉक्टर है और आलिमे दीन है तो मेडिकल की डॉक्टर होने की वजह से उसकी एक हैसियत है मुख्य चीजें जमा जाती हैं सियासियात के मैदान में जो लोग आते हैं उनकी मजहबी हैसियत भी होती है और सियासी हैसियत भी होती है अलग अलग करके अगर सोचा जाए तो सियासियात में अगर आप इसकी मिसाल देखें मैं सिर्फ आपसे अर्जी कर रहे हैं कि आदमी में बर्दाश्त की कुव्वत कितनी होती है ईरान का जब इंकलाब बरपा हुआ तो जो भी इंकलाब के मुखालिफिन थे उन्होंने एक दिन ऐसा धमाका किया कि इंकलाब बर्बाद होने के लिए काफी 80 आदमी जो कुमैनी साहब ने जिंदगी में तैयार किए थे सारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और भक्त से उड़ गए और 80 आदमी खबर हो गए एक आदमी को तैयार करना बड़ी मुश्किल होती है और दुनिया का प्रेस चीख रहा था कि ईरान के इनकलाब खत्म हो गया इसलिए कि जितने उसके रहनुमा थे लीडर्स थे ये सब के सब मारे गए तो उसने कुमैनी की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि छोटा बेटा आया वो कहता है कि मैं वालिद के पास गया और मेरी आंखों में आंसू थे तो वालिद खबर सुन चुके थे तो मुझसे कहा क्या हुआ है तो मैं तो सारी खबर सुन चुका हूं तो मैंने उन्हें रोते हुए इत्तला दी कि बड़े भाई अहमद का इंतकाल हो गया अहमद भी बीच में शहीद हो गया है तो वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और मुझे कहने लगा कि मेरा बेटा होके रो रहे हो तुम्हें आखिरत पर कोई एतमाद नहीं है जन्नत में अल्लाह के यहां सब मिलेंगे तुम्हारा भाई जल्दी चला गया है तो क्या हुआ और मुझे डांट के कमरे से निकाल दिया कि भाई की शहादत पे आंसू क्यों आ रहे हैं रो क्यों रहे हो ये है लीडरशिप में कुव्वत के सदा बेटा वरना बूढ़ा बाप जवान बेटा आखिर कुछ भी हो बेटा तो बेटा ही होता है दिल दिल पे रह जाता है लेकिन बिल्कुल कोई रोना धोना नहीं ये आसाब हैं जो इंसान के फैसला करते हैं कि उसने किस हालत में क्या काम करना है इसलिए अच्छे लोग वो होते हैं जो ठंडे मिजाज के होते हैं बड़ा बहुत बड़ा खुदा का इनाम है कि किसी आदमी का मिजाज ठंडा हो और जितना मामला गंभीर हो जाए अपने घर की सतह पे शहर की सतह पे मुल्क की सतह पे जितना जो जिसका इख्तियार है जितना मामला गंभीर हो जाए वो उतने ही ठंडे मिजाज से सोचे फिर मसाइल का हल निकलता है ये है अक्सबियत कुव्वत बर्दाश्त सबसे अच्छी तारीफ असबियत की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांच मर्तबा जुमला फरमाते हैं एक जुमले पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल शायरी क्या चीज है, तो आपने शायरी कैसी है, तो आपने उन्हें अच्छी अच्छी है बुरी बुरी फैसला फरमा दिया। अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल अकबियत क्या है, तासुब क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी कौम की जुल्म पे मदद करना ये तासुब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी अपनी कौम के साथ रहता है और जुल्म की हिमायत नहीं करता और अपनी कौम के लिए उसे गैरत आती है, ये है तासुब, ये है असलियत के बिल्कुल ठीक है। और अपनी कौम से जुल्म कर रही है और ये जुल्म में कौम के साथ शरीक हो रहा है न उस बुनियाद पे कि मेरी कुंबा मेरी बरादरी मेरा कबीला है, तो फरमाया ये असलियत। इसको इतना नापसंद किया है इस्लाम ने, इतने सख्त लफ्ज कहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब यह हदीस पढ़ी तो देखना पड़ा, तहकीक करनी पड़ी कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त अल्फाज फरमाए थे। आपने कहा मन दा इल्लल्लाह तबिया फलैसा मिन्ना, जो आदमी हमें बुलाए दावत दे कि जब मेरी कौम जुल्म करे तो तुम तब भी हमारा साथ देना, आपने फरमाया मेरी उम्मत से निकल गया। और आपने फरमाया जब तुम्हें कोई बुलाए कोई गिरोह कोई ग्रुप और कहे कि मेरा कबीला तुम्हारा कबीला एक है और हम जुल्म कर रहे हैं हमारा साथ दो, तो आपने फरमाया फिर तुम इशारे कनाए से काम ना लेना, उसके कबीले का नाम लेके उसे गाली दो ताकि उसे पता चले कि हम जुल्म पे एक दूसरे के साथ ताबून नहीं करेंगे। यह असलियत का दूसरा पहलू जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। मतलब एक कबीला खड़ा होता है, पठान है, वो अपने कबीले वालों को जमा करता है और वो कहता है कि फलां कौम को मारना है। भाई वजह क्या है, क्यों मारना है? वो कहते हैं कुछ नहीं, हमारे खिलाफ है। भाई किस वजह से खिलाफ है? बगैर तहकीक के अपने कबीले का जुल्म पे साथ देना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे लानत की है। ये वो असलियत जो इब्ने खुल्दून के यहां और वो जो थे सियासियात पे जिन्होंने लिखी है किताब मावर्दी के यहां, इब्ने खुल्दून के यहां, खुद शाहबुल्लाह रहमतुल्लाह के यहां, ये जितने उलमाए सियासियात हैं हमारे ये सब के सब इसको रद्द करते हैं, इसके खिलाफ बात करते हैं। इसलिए कि इन लोगों के पास सियासियात का पूरा निसाब है। ये सियासत ऐसी चीज नहीं है कि जो उठे सियासत में आ जाए। इस्लाम ने सियासियात का मुस्तकिल निसाब मुकर्रर किया। उलमा ने बाकायदा बताया है कि ये किताबें पढ़ें और ये किताबें पढ़ने के बाद फिर अपने बड़ों के नीचे रह के काम करें, फिर जब बड़े हो जाए तो फिर ये सियासतदान हो जाए। जैसे मेडिकल का निसाब है, हर आदमी अगर दावा करना शुरू कर दे कि मैं डॉक्टर हूं मैंने किताब पढ़ी है तो कोई नहीं मानता। लोग कहते हैं एक इदारा है, इस इदारे में जाइए, इतने साल तालीम हासिल कीजिए, उसके साथ प्रैक्टिकल कीजिए, फिर आप इससे फारिग हो जाए, फिर एक साल आप वो क्या हाउस जॉब कीजिए, हाउस जॉब के बाद कोई मानेगा तुम डॉक्टर हो। बिल्कुल इसी तरह सियासियात का निसाब है। और हमारे इल्म में नहीं कि कोई एक सियासतदान ऐसा हो इस वक्त जिसने उस निताब को पढ़ा हो, बल्कि उसको पता ही नहीं होगा कि किताबें कौन कौन सी हैं जो मुझे पढ़नी। वरना सियासियात पूरा निताब है, उसमें वो पढ़ाते हैं कि तासुब क्या चीज है, वो उसमें पढ़ाते हैं कि असबियत क्या है, वो उसमें पढ़ाते हैं कि ये चीजें क्या हैं। अगर आप खुमैनी की तहरीरात को देखेंगे, फिर सियासियात के हवाले से मजहब को एक तरफ रख के, तो उन्होंने अपनी किताबों में जो फलसफे को पढ़ाया और फलसफे की जो चीजें उन्होंने लिखी हैं, इससे पता चलता है कि इन लोगों का मुताला कितना गहरा होता है। फिर जाकर कई कौमों में इनकलाब और ये चीजें सोचने की होती हैं, वरना ऐसे थोड़े ही है कि जो उठा सियासतदान हो गया और जो तांगा चलाता है वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है, जो बाल काटता है उसकी दुकान पे चले जाए वो भी अमरीका रूस के मुतल्लिक राय देता है, ऐसे थोड़े सियासत होती है। इसी इन उलमा ने सियासियात पे किताबें लिखी इब्ने खुल्दून समेत, ये सब इस बात को कहते हैं कि असलियत कौमों को जिंदा रखती है, तासुब कौम को जिंदा रखता है। उस तासुब की बहुत मिसालें, मसलन आप देखें उस तासुब असलियत पॉजिटिव साइड पे मुस्बत अंदाज में सही तौर पर सोचने में उस असलियत ही का नतीजा है اور اس کی ایک مثال یہ جمعہ کا خطبہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا میں جہاں گئے ہیں انہوں نے کتاب و سنت میں جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی تھی اس میں عربی کو نہیں کرا نہ انہوں نے اجازت دی عربی کو بدلنے کی اگر وہ عربی کو فرض اور واجب چیزوں میں بدلنے کی اجازت دے دیتے تو مسلمان آج کبھی بھی اس حالت میں نہ ہوتے یہ تھوڑا بہت دین باقی رہ گیا یہ بھی ختم ہوتا ہے اس بات کی ذرا سی وضاحت ایک آدمی بیت الخلاء بھی جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے تھے ٹائلٹ سے بیت الخلاء سے تو کبھی کبھی صرف ایک لفظ کہتے تھے غفرانک اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں محدثین نے بحث کی ہے کہ وہ جو اندر گئے تھے تو تبھی ضرورت تھی کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیوں کہا کہ غفرانک اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر بہت جواب اس کے دیا آسان جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ میں جتنی دیر بیت الخلاء میں گیا اے اللہ تجھے یاد نہیں کر پایا یاد نہیں کر سکا اللہ معافی مانگتا ہوں کہ اتنی دیر بھی تیری یاد کے بغیر کیوں گزر گیا یہ ایک تشریح کی کسی وجہ سے بھی فرماتے ہو اب آج کا دور پچھلا دور کوئی آدمی بیت الخلاء سے باہر آتا ہے اور اس دعا کو غفرانہ کا کہنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں تو فقہا کہتے ہیں اس آدمی نے سنت ادا کر دی اس آدمی کو ثواب ملے گا اگر غفرانک کہتا تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے اس لیے کہ عربی بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ دہرا دیا لیکن اگر نہیں دہرایا اور اردو میں زبان میں اس نے کہہ دیا پنجابی میں پشتو میں کسی نے اپنی زبان میں کہہ دیا تو ٹھیک ہو اس لیے کہ یہ دعائیں واجب نہیں فرق تھوڑی کوئی فرق نہیں ایک آدمی نے ساری زندگی بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی دعا نہیں پڑی تو قیامت میں اسے عذاب تو نہیں ہوگا یہ دعائیں مستحب ہیں اور اس کے مقابلے میں مثلا کھانا کھایا اب کھانے میں ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہ کا شکر ہے اس نے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے کھانے کو دیا اللہم زدنا منہ اللہ آئندہ جو کھانا آئے اس کے بعد اللہ اسے اچھا دے دے کوئی عرض نہیں آدمی اردو میں دعا مانگ لے ثواب اسے بھی ملے گا اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب ہیں دعا ہی نہیں پورا دین مثلا نماز میں ساری دعا تو نہیں نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں یہ دعا تو نہیں ہے اس ساری نماز کی زبان عربی ہے اس کو شریعت نے کہا فرض کے درجے میں ہے خبردار جو اس کی زبان بدلی کیونکہ اگر اجازت دے دیتے کہ زبان بدل لی جائے تو پھر مسلمان یہ کرتے کہ بجائے اللہ اکبر کہنے کے کہتے اللہ سب سے بڑا اور ہاتھ باندھ دیتے اور فاتحہ پڑھنے کے بجائے کہتا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک پھر جھگڑا آگے کھڑا ہوتا کہ مالک ہے یا ماسٹر ہے یا کیا ہے اس کی تشریح کرو پھر کہتا قیامت کا دن ہے یا یہ لفظ جو ہے قرض کے بدلے میں دین استعمال ہوتا ہے یہ کیا شریعت نے جہاں بھی فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں تھی کا خبردار جو زبان کو بدلا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہی اجازت دی گئی کہ وہ فرض اور واجب درجے کی چیزوں میں زبان کو بدلے نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل ساری ختم ہو گئی تورات ساری ختم ہو گئی کچھ باقی نہ رہا اگر اس طرح قرآن کو اپنی لوکل لینگویجز میں ترجمے پڑھنے کی اجازت دے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نتیجہ یہ نکلتا کہ قرآن کی اصل زبان عربی عربوں تک محدود رہ جاتی مسلمان بالکل قرآن ہندوستان کا کوئی اور ہوتا چین کا کوئی اور ہوتا انگلینڈ کا کوئی اور ہوتا یہ شریعت نے تعصب کا پہلو جو دیا ہے یہ مثبت اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کہاں کہاں گئے جمعہ کا خطبہ انہوں نے عربی زبان کے علاوہ نہیں دیا یہ نہیں ہے کہ انہیں زبانیں نہیں آتی یہاں کابل میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے گورنر کے ساتھ 10 سال گزارے 10 سال کابل میں رہے پر فارسی نہیں آتی تھی फारसी सीखी उन्होंने सब पठान थे फारसी बोलते थे फारसी उन्हें आती थी लेकिन जब भी जुमे को खुतबा देते थे अरबी में देते थे ये जो है ना अरबी खुतबा आप तब्दील कर दो इसे इंग्लिश में कर दो अमेरिका में चले गए तो आप चले जाएं अमेरिका में तो इंग्लिश में भी खुतबे लोग देते हैं वो इस बात को नहीं जानते कि आज आप खुतबे की नमाज जुबान बदल रहे हैं कल आप नमाज की जुबान बदल देंगे परसों आप कुरान करीम के तर्जुमों के मुतल्लिक कहेंगे कि बस तर्जुमा पढ़ लिया ये काफी है अरबी की कोई जरूरत नहीं है तो होते होते दो चार सदियों में कुरान कहीं ना कहीं पहुंच जाए कुरान को इंग्लिश में तर्जुमा करो अब इंग्लिश से वो फ्रेंच में तर्जुमा करेगा डायरेक्ट अरबी से फ्रेंच में नहीं करेगा और जो फ्रेंच तर्जुमा हुआ है वो आगे उससे जापानी जुबान में फर्क कर लो कर लेगा तो तीन जगह से कुरान फिर के आएगा तो असल जो मतलब अरबी में था कुछ का कुछ हो जाएगा ये जो तासुब है यही है वो चीज जो उसका मुस्बत पहलू है कि कौमें अपने वजूद को इस तासुब की बिना पर बाकी रखती कौमें इस तासुब की बिना पर अपने वजूद को बाकी रखती हैं अगर उनसे ये गैरत निकाल दी जाए और फर्ज और वाजिब दर्जे की जो इबादात हैं उनमें इजाजत दे दी जाए एक तो अपनी जुबान को छोड़ दो नतीजा ये कि वो दीन बदल जाता है इसीलिए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु किसी ने कहा कि क्या हम फारसी जुबान में बोलने लगे तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मना फरमा दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल फारसी जुबान इस्तेमाल ना करना तुम अरबी बोलो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इतने सख्त थे वो जानते थे ना कि कौमें जम कैसे होती हैं और एक तहजीब दूसरी तहजीब पर छा कैसे जाती तो वो वक्तन फवक्तन इन चीजों का इजहार करते थे उन्हें इत्तला दी गई कि जब से ईरान और इन इलाकों से वास्ता पड़ा है ईरानी बहुत समझदार इस्लाम से भी पहले कई हजार साल की तहजीब थी ईरानियों के यहाँ नक्शो निगार ईरानियों के यहाँ ऐश की जिंदगी ईरानियों के यहाँ खूबसूरती और ये तसव्वुरात तो कदीम से चले आते थे यहाँ तक के जब ये निकले इसीलिए फिरदौसी जो है ना उसने अपने शाहनामे में लिखा है तो वो कुफरिया शेयर तकरीबन लेकिन बाप से अजीब कही है माज अल्लाह वो कहता है अब शाहनामा लिखते हुए शाहनामे में फिरदौसी ने बहुत काम किया कहते हैं कि फिरदौसी के साथ सुल्तान महमूद गजनवी ने वादा किया कि अगर तुम शाहनामा लिखो तो तुम्हें हर शहर पे एक अशरफी इनाम में मिलेगी लिख लिया लेकिन जब सुल्तान महमूद ने ये शेर पढ़े सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी थे इतना बड़ा दिमाग था ये कि शायद पहले भी अर्ज किया था कि जब ये पैदा हुआ है तो सुबुक्तगीन के वालिद से लोगों ने जाके कहा कि तुम्हारा बेटा जिस घड़ी पैदा हुआ है इस घड़ी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं उनका ये इतना मुबारक तुम्हारा बेटा है कि इतना ही कोई बड़ा काम करेगा जैसे कौमों में अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया था नतीजा ये कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे जो हमले किए और जो इस्लाम फैला कौम उसका नाम मिला ये अलग बात है जब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं अब कभी पढ़े नेहरू को आप कहेंगे अजीब बातें हम मेंबर में बैठ के नेहरू की बात करें लेकिन आप पढ़िए सियासियात में नेहरू ने एक जगह लिखा है इंदिरा का जो बाप था नेहरू ने लिखा है कि यह खुदा का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया वो कहता है अगर ये तलवार दरमियान में ना आती और हिंदुस्तान पे सुल्तान महमूद हमले ना करता तो हम हिंदू राजों महाराजों के लिए इस्लाम को रोकना नामुमकिन हो गया था ये सूफी सारे हिंदुस्तान में हिंदू मत को चाट जाते खत्म हो जाते हिंदू और इस्लाम ही इस्लाम होता ये तो तलवार जब दरमियान में आई तो फिर हमारे हिंदू राजवाड़े और राजे जागे और इन्होंने क्या तलवार का मुकाबला तलवार से करो तो हिंदू कुछ उठे हैं वरना तो ये सूफी सारे हिंदुस्तान को चाट जाते पूरा हिंदुस्तान ही मुसलमान हो जाता ये जंगों का दूसरा पहलू के दूसरे पहलू में ऐसे भी हुआ करता है कि इससे लिखा है नहीं इसलिए वो महमूद गजनवी उससे कहा कि शाहनामा लिखो जब इन्होंने शाह पर पहुंचा उससे बड़ा बड़ा बुरा मनाया और उसको कुछ नहीं दिया لیکن ایرانی ایک عظیم بادشاہ تھا اسلام سے بھی پہلے زمانے کا بڑا اسلام کا دشمن وہ کہیں فردوسی کو خواب میں آیا یہ بھی ایک دنیا ہے پوری لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ پڑھ لکھ کے انکار کرتے ہیں اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے تو وہ جو کافر تھا بادشاہ اس سے خواب میں آگے فردوسی سے کہا کہ زبردست تم نے لکھا ہے میں نے یہاں آخرت کی دنیا میں اسے سنا ہے تمہارے شاہنامے کو تم نے ہماری ایرانیوں کی جو تعریف کی ہے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ فلان جگہ جاؤ فلان جگہ جا کر وہ جو ویران ہے اسے کھودو اور اتنے ہزار سال پرانے سکے ہیں میرے پڑے ہوئے وہ لے لو تو گیا اسے کھودا اور کہتے ہیں اسے خزانہ مل گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا تم اتنے مالدار ہو گئے اس نے کہا یہ زندہ محمود غزنوی سے وہ مرا ہوا بادشاہ اچھا ہے کہ اس نے مجھے سارے شاہنامے لکھنے کی قیمت پوری کر کہ فارسی اس میں وہ لکھتا ہے جس پہ سلطان محمود بھی ناراض ہوئے اس نے کہا ہائے افسوس یہ گو کھانے والے گو ایک جانور ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے چھپکلی کی طرح چھپکلی سے 100 گنا بڑا کر لو عام طور پہ اسلام آباد میں بھی روڈ پہ کبھی کبھی کوئی چیز کرش کر جاتی ہے اسے تو نظر آتا ہے اسے کہا ہائے افسوس یہ گو کھانے والے اور ہائے افسوس یہ اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو فتح کر لیں گے کیا اتنی گئی گزرا زمانہ آ گیا کیا دنیا اتنی تباہ ہو گئی ہے یہ ایران کو فتح کے خواب دیکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ تو تھے جس کو سلطان محمود نے بڑا برا منایا محمود نے بڑا تعصب تھا اسلام کے لیے دین کے لیے حتیٰ کہ جس موقع پہ بغداد کی خلافت نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم نہیں قابو پا سکتے اس موقع پہ سلطان محمود ملتان آیا اور ملتان میں جو اس نے پھر تباہی کی ہے اسلام کے دشمنوں کی اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اس آدمی میں تعصب تھا اس طرح کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے قوم کو بچایا ایرانی کہتے تھے اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جب ایران گئے تو آپ قوموں کی ثقافت اور تمدن کا فرق دیکھیے کتنا ہوتا ہے انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانے کے لیے جو چیزیں رکھی بھنا ہوا گوشت تھا اور پتلی چپاتی چپاتیاں ہمارے یہاں بھی بنتی ہیں ایسی ایسی بھی بنتی ہیں خواتین بناتی ہیں کہ اسے کوئلوں پہ رکھ کے سیک لیں تو اس کے دو پلے بن جاتے ہیں اتنی باریک چپاتیاں تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے گوشت کھا لیا اور چپاتیاں لے کے ہاتھ صاف کرنے لگے ایرانی ہنس پڑے انہوں نے کہا حضور یہ کھانے کی چیز ہے اچھا ہی کھاتے ہیں کس طرح ان کا اس طرح سالن سال لگا کے کھایا کرتے ہیں یہ ہاتھ موچھنے کے رومال نہیں تمدن کا اتنا فرق تھا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے جب انہیں پتا چلا کہ ایران کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں یہ ہے سولیزیشن کا کلیش جب ہوتا ہے تو پھر ایسی صورتیں پیش آتی ہیں حکمران تھے نا اور انہوں نے زندہ رہنا تھا دنیا میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا خبردار میں جو سنوں کہ تم میں سے کوئی آدمی رکاب میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر بیٹھتا ہے دنیا میں یہی دستور ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کا بھی یہی ہے رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسرے پاؤں کو اوپر سے کر کے گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبردار میں فوج میں سنوں کہ کوئی رکاب پہ گھوڑے کے نقاب میں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے بالکل تم قدیم عربوں کی طرح رہو گھوڑا کھڑاؤ اور جست لگا کے اس پہ بیٹھو گھوڑے کو تھوڑا سا چلاؤ ساتھ دوڑو اور پھر اچھل کے اس پہ سوار ہو جاؤ خبردار تم نے اس چیز کو قبول کیا کہ رکاب میں اپنا پاؤں گا منع فرما دیا تو جانتے تھے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اجازتیں دینے سے عجم کی ثقافت عربوں پہ غالب آ جائے گی اور مسلمان اپنی اصل چیز سے دور ہو جائیں گے ایرانی نہاتے تھے ہمیشہ سردیوں میں سٹیم باتھ بڑا قدیم یہ چلا آتا ہے یہ جو حمام ہیں یہ جو سٹیم باتھ ہیں یہ آج کے دور کے نہیں ہیں یہ تو کئی ہزار سال پرانے ہوتا یہ تھا ان کے ہاں کہ عورتیں اور مرد عورتیں عورتوں کا اور مرد مردوں کا حمام بنا لیتے تھے اب تک اردن میں پائے جاتے ہیں شام آپ چلے جائیں بہترین آپ کو ملیں گے اور وہ ننگے ہو کے نہ آتے تھے عورتیں عورتوں میں مرد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس پہ جو حمام میں جاتے ہیں سختی سے منع کر دیا ایرانیوں کے ہاں یہ تھا اور سٹیم باتھ لیتے تھے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا تھا یہ نہیں ہے کہ کوئی سیم باپ میں جائے تو اس پہ لعنت پڑ جائے وہ جو بے حیائی تھی اس پر لعنت فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا اور ایرانی تہذیب سے یہ باپ کا تصور آنے لگا کہ باپ لیا کریں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا پہنچ کو اور فرمایا خبردار جو تم نے حمام قائم کیے جو عربوں میں پرانا ایک طریقہ چلا ہے صحراؤں میں دھوپ پہ بیٹھنے کا اور اتنا دھوپ میں بیٹھنا کہ جسم سے پسینہ نکلنے لگے اتنا چلنا دھوپ میں کہ جسم میں پسینہ آ جائے بس تمہارے لیے یہ کافی ہے ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ اس لیے تھا کہ فوج کے اثرات جہاں فوجی جاتے ہیں دو محکمے ایسے ہیں آپ چاہیں تو تیسرا بھی شامل کر لیں ایک فوج اور ایک قاضی عدلیہ یہ عدلیہ جہاں جاتی ہے وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے قومیں بدل جاتی ہیں قاضی جیسا ہوتا تھا شہر کے لوگ ویسے ہو جاتے تھے کیونکہ قاضی کا منصب تھا وہ آتا ہے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے خطبہ دیتا ہے عید پڑھاتا ہے فیصلے کرتا ہے قاضی کا آنا جانا لوگ دیکھ کے کہتے تھے قاضی کی شخصیت جو ہے زبردست ہے ایسی ہونی چاہیے اور جب پھر فوج حکمرانی جب کرتی ہے تو لوگ فوج کے طرز قدم پہ نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں یا تیسرا اضافہ آپ کر لیں تو پھر وہ میڈیکل ہے کہ جس بستی میں ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کوئی چلا جاتا ہے وہ جیسے ہوتے ہیں جس مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں بستی پر اس کا اثر پڑتا ہے اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 150 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 200 برس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لکھتے ہیں ایک جگہ کہ بڑا افسوس ہے مجھے مسلمانوں پہ کہ جو قدیم سے عیسائیوں میں میڈیکل کا علم چلا آتا تھا ہمارے مسلمانوں نے اسے نہیں سیکھا اور عیسائیوں کا علم ضائع کیا اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو مسیحیت ان کو سکھائی تھی اس میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور لوگوں کے علاج کرنا تھا مریضوں کا علاج کرنا تھا تو یہ عیسائیت میڈیکل کے ساتھ وابستہ رہی نتیجہ یہ نکلا وہ جہاں جاتے تھے عیسائی خود ہندوستان میں وہ ڈاکٹر جو مذہب لے کے گیا لوگ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا مذہب عیسائی ہے لہٰذا عیسائیت بہت اچھی چیز ہے ان کا مذہب یہودیت ہے یہودیت بہت اچھی چیز ہے کہ یہ چیزیں چھا جاتی ہیں فوج سے لوگ اپنی شخصیت بناتے ہیں عدلیہ سے بناتے ہیں ڈاکٹر جو علاج کرنے والوں سے اس سے بناتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مسئلے کو اس چیز کو جانتے ہوئے انہوں نے فرما دیا کہ دیکھو عربوں کی جو قدیم عادت ہے اسے نہیں چھوڑنا فوج کبھی بھی رکاب میں پاؤں نہیں رکھے گی فوج کبھی بھی یہ حمام میں نہیں جائے گی بلکہ وہ کھلے ٹھہراؤں میں لیٹیں گے پیدل چلیں گے تاکہ ان کا پسینہ بہے اور صحت اچھی ہو اور فوج کبھی بھی چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائے چھنا آٹا اتنی عجیب چیز تھی عائشہ رضی اللہ عنہ تک جسے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین پہلی بدعت اسلام میں کون سی آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی بدعت اسلام میں آٹے کا چھاننا آیا ہم نے تو کبھی آٹا نہیں چھانا تھا اور پھر آہستہ آہستہ چھلیاں آئیں اور لوگ آٹا چھان کے کھانے لگے ہم ایسے نہیں کرتے تھے تو اسے پوچھا ام المومنین کیا کرتی تھی انہوں نے کہا آٹا پس کے آتا تھا اور پسے ہوئے آٹے کو ہم چھاچ میں ایک چیز میں ڈال کے ذرا اسے چھالتی تھی تو تین کے ایک طرف جمع ہو جاتے تھے ہم خوب مار کے تین کو اڑا دیتی تھی جو آٹا باقی بچا تھا روٹی بنا لیتی تھی بدعت اس معنی میں نہیں جو شرعی معنی ہے بلکہ بدعت لغت کے معنی میں ڈکشنری کے معنی میں ایک نئی چیز سامنے آئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر فوج کو یہ اجازت دے دیں کہ چھنے آٹے کی روٹیاں وہ کھانے لگیں اور اس طرح نرم و نازک ہو جائیں تو آگے جہاد کون کرے گا خون کون دے گا لڑے گا کون یہ ہے وہ تعصب اور عصبیت کا اچھا پہلو جس کی وجہ سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور عصبیت کا وہ برا پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی وہ ہے کہ جب قوم ظلم کرے اور لوگ ظلم میں اس کی مدد کریں اسے منع فرما دیا اور اس کو شریعت کا اختیار کرو تاکہ تم اپنی تہذیب کو برقرار رکھ سکو غیر قوموں کی تہذیب میں ڈھل نہ جاؤ کافی اہم ہے